बीजांकुर जनना भौ बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागताय ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हिते शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की,
जुले परम पूज्य मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंडा श्री भक्ति सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम सभी लोग हमेशा की तरह आज इस बात को जानने के लिए बैठे हैं कि क्या कोई उपाय है हमारे जीवन में, हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन हम और बेहतर ढंग से जी सकें। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ये बात हम पिछले दिनों कई तरह से समझ चुके हैं। कौन अपने जीवन को कितना बेहतर बना पाएगा ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। यदि हमारा जीवन अच्छा नहीं है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ऐसी स्थिति में जबकि अपने मौजूदा जीवन और अपने भविष्य के प्रति हम ही जिम्मेदार हैं, तब फिर क्यों ना हम अपने मौजूदा जीवन को इतना व्यवस्थित, इतना रेगुलेट और इतना परफेक्ट बना लें कि हम भविष्य के प्रति निश्चिंत हो सकें। आखिर बात क्या है, ऐसा क्या है हमारे जीवन में कि जो हम स्वयं पसंद नहीं करते फिर भी वो हमारे जीवन में है? ऐसा क्या है जो कि हमें अच्छे होने से रोकता है? वो सब हमारे भीतर ही है। कई बार तो हम नहीं जानते हैं और कई बार हम जानबूझ करके भी जो बुरा है उसे हटा नहीं पाते जीवन में से और जो अच्छा है उसे ला नहीं पाते हैं। एक बहुत पुरानी घटना, बहुत प्रसिद्ध घटना है, शायद आपने कहीं सुनी हो, मेरे से भी सुनी हो, संभव है। एक बार कुछ लोग, कुछ यंग्स और एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। वो वोटिंग करना चाहते थे और शाम रात घिरने को है और उन्होंने एक मल्लाह से तय किया कि वो एक नाव दे दे। मल्ला ने कहा ठीक है, नाव मिल जाएगी। मैं भी साथ चलूंगा। युवाओं ने कहा कि तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, हम लोग नाव चला के जानते हैं। उसने कहा ठीक है साहब, आज शायद हम लोगों के साथ भी यही गुजरता है। हम लोग अपने जीवन के बारे में अनभिज्ञ होने के बाद भी अपने जीवन को जीना तो शुरू कर देते हैं, पर अगर कोई ये कहता है कि अगर मेरी मदद चाहो तो हम इनकार कर देते हैं। हम शायद अपने इस जीवन में किसी की अच्छा बनाने के लिए मदद नहीं लेना चाहते, बुरा बनाने के लिए अपने जीवन को हम बिना किसी विचार के और सबकी मदद ले लेते हैं। मुझे कई बार लगता है कि क्या जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं क्या वे अपने मित्र को साथ में लाते हैं? जो जो लोग भी अच्छे काम करते हैं क्या वे और लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने? नहीं। अगर सिनेमा देखना हो, अगर पिकनिक जाना हो, अगर क्या कहें उसको घूमने जाना हो, जो भी कह लीजिए, इंटरटेन करना हो, तो हम कितने लोगों को निमंत्रण देते हैं? क्यों हो गया क्या? और वो भी तैयार हो जाता है। अगर हम किसी से कहें कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में पीछे थोड़ी सी जगह है, आप चलना पसंद करेंगे? हम महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे क्या? हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आइए बैठिएगा। हम पूजा कर रहे हैं, आप भी कर लीजिएगा। नहीं, पार्टिसिपेशन भी हम बुरे में ही करते हैं, भले में नहीं करते हैं। और उन्होंने मल्लाह को इनकार कर दिया, क्योंकि मल्लाह बाधक बन सकता था, वे वहां जो करेंगे उन्हें करना क्या था? वे खाने पीने का सामान लाए थे। ये खाना और पीना शब्द बड़ा भला शब्द नहीं है। हां, खाने के मायने आप समझ जाओ, रोटी खाने को खाना नहीं कहते, हां, और पानी पीने को पीना नहीं कहते, दूध पीने को पीना नहीं कहते, पीना सब जानते हैं। मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं कि आप नहीं पी, आप पीते ही हैं, नहीं, ये कह रहा हूं क्या? नहीं, पर वो लोग इसी के लिए आए थे, उनके पास खाने का सामान भी था, उनके पास पीने का सामान भी था, और उन सब ने आज हमारे यंग्स की एनर्जी, टाइम और मनी, मुझे नहीं कहना चाहिए पर क्या करूं, पॉजिटिवली देखा जाए तो नहीं, यंग्स बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यंग्स पता नहीं किस रो में, और कई बार इन सब चीजों में इतने रच पच जाते हैं और साथ में तर्क भी देते हैं कि आपके दिन लग गए, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है। देखना मजा, हमारे पास लॉजिक भी है। हम अगर बुरा करते हैं तो बुरा करने का हमारे पास कोई ना कोई लॉजिक है, तर्क है, और हम अपने उस बुरे को भी ठीक मान करके कर लेते हैं। वरना अगर बुरे को कोई बुरा मान के करे तो बहुत जल्दी छूट जाएगा। मजा यह है कि बुरे को भला मान करके करते रहो तो बिल्कुल नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि छोड़ना। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आप को कष्ट दान। और जो जो भी अच्छाइयां हैं वे सब करने में कष्ट मालूम पड़ता है। इससे मालूम पड़ता है कि हम क्या सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं या नहीं, या कि सिर्फ कहते ही कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या हुआ, होना क्या था, सारी रात चप्पू चले, सारी रात खाया गया पिया गया, और सुबह तक उनने सोचा कि अब तो अपन बोटिंग करते करते उस किनारे पहुंच गए होंगे, लेकिन जब सुबह थोड़ा सा नशा कम हुआ, वैसे भी मोह का नशा क्या कम है जो कि और ऊपर से नशा करना पड़ता है आदमी को, लेकिन जब उनका थोड़ा सा नशा हटा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही तट है जिससे हमने यात्रा शुरू की थी, बात क्या हुई, इतने चले सारी रात चप्पू चले और हम कहीं नहीं पहुंचे। मल्लाह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था कि हो गई साहब आपकी बोटिंग, तो लौटाओ नाव हमारी, अब हम दूसरा अपना काम शुरू करें धंधा। उन्होंने कहा मल्लाह हुआ क्या? मल्लाह ने कहा बाबू उतर के बताओ, आप खुद ही देखकर बताओ कि क्या हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। उसमें से एक उतरा, उसने देखा कि नाव की रस्सी तो किनारे से ही बंधी हुई है और नाव सारी रात चलती है। हमारे साथ भी यही है, हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी जीवन की नाव बुराइयों से बंधी हुई है और हमारी अच्छाइयों की यात्रा शुरू हो गई। हमने पूजा शुरू कर दी है, हमने बहुत सारी चीजों का त्याग शुरू कर दिया है, हमने और भी बहुत बहुत स्वाध्याय करना शुरू कर दिया है, पता नहीं हम और बहुत सी अच्छी चीजें शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारी अपनी बुराइयां उनसे तो हम ज्यों के त्यों बंधे हुए हैं। महाराज मंदिर में 1 घंटे पूजा आप करवा सकते हैं लेकिन 23 घंटे बाकी आप ये कहो कि दुकान पे बैठ के पूजा की जाए, तो आप ही बताओ कैसे पूजा हो सकती, दुकान पे तो बेईमानी हो सकती। अरे सीधी सीधी सी बात है, ऐसा हमारे पास तर्क है, ऐसा हमारे पास अपने को सांत्वना देने का ज्ञान है, कंसोलेशन इसको कहते हैं। हम अपने को सांत्वना दे देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत नेचुरल है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम अपने वाकई में जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुराइयों से, अपने दुख के कारणों से बचना भी पड़ेगा अगर सुख पाना है। आज अपन थोड़ा सा अपने दुख के कारणों पर विचार करते हैं। बहुत से दुख के कारण हैं पर अगर गौर से देखें तो एक कारण बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है आज के संसार में, एक महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की दौड़, हाई एम्बिशन, कॉम्पिटिशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिशन बुरी चीज है पर हो जाती है बुरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एम्बिशंस महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, पर कोई भी चीज जब अधिक होती है तो वो दुखदायी हो जाती है। बचपन से ही हमें हमारे माँ और पिता महत्वाकांक्षी बनाते हैं, दौड़ो दौड़ो, वो जो बाजू वाले का बेटा है वो तुमसे कितना आगे निकल गया, इतने ही नहीं पढ़ाई लिखाई में नहीं, जब पैदा होता है तभी से कंपटीशन में डाल देते हैं। अगर 7.5 पाउंड का हुआ है, अरे थोड़ा कमजोर हुआ, उनके हुआ था जब 8.5 पाउंड का था, मेरा बेटा तो 7.5 के। यहां से कंपटीशन शुरू, यहां से प्रतिस्पर्धा उसके जीवन में, जबकि उसे अभी कुछ नहीं मालूम है। हम जो उनके माता पिता कहलाते हैं अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा में डालते हैं, भैया किसी एक क्षेत्र में आगे होना फिर भी संभव है लेकिन हर जगह आगे होना, ये जो आगे होने की और प्रतिस्पर्धा की भावना है वो हमारी अशांति और हमारे दुख का ही कारण है। मेरा बेटा पढ़ने में भी होशियार हो, सबसे आगे हो, लड़ने में भी उतना ही होशियार हो, गेम्स में भी उतना ही होशियार हो, इन सब चीजों में उसे हम डाल देते हैं और धीरे धीरे वो क्या सीखता है, वो अपनी लाइन बड़ी करना नहीं सीखता, वो दूसरे की मिटाना सीखता है। क्यों? उसे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सरलतम उपाय क्या हो सकता है? यही कि दूसरे ब्लैक पुलिंग, यही कि दूसरे को टांग मारो, आगे निकल जाओ। ये सीखता है वो, आप सोच रहे थे होशियार बनेगा, बन जाता है वो चतुर। हां, वो अपनी लाइन बड़ी नहीं करता। फिर अपनी लाइन बड़ी करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी करना ये तो बिल्कुल बुरी बात है और दुख का ही कारण है, और हम सबके दुख का एक बड़े से बड़ा कारण है यही। आप खुद सोचिएगा, मैं कह रहा हूं इसलिए बिल्कुल मत मान लीजिए। आप खुद देखिए, अपने जीवन में झांक के देखिए कि मेरे लिए दुख कब आता है। एक बेटा 75% नंबर लाता है, कोई दुख का कारण नहीं है? 75% नंबर लाना कोई दुख का कारण है क्या? नहीं। लेकिन जब वो घर आता है तो उससे पूछा जाता है कि कितना परसेंट आया? 75। हाईएस्ट कितना गया? 92। सिर्फ 75? तब उसे अपने 75 दुख का कारण नजर आने लगते हैं, अभी तक नहीं थे। इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा। मेरे पास जो है उससे मुझे अधिक तो चाहिए है, लेकिन चूंकि दूसरे के पास मेरे से अधिक है इसलिए मुझे अधिक चाहिए है। ये क्यों? मेरे 75% आए हैं, किसी और के 92% आए हैं, मैं खुश हूं कि उसके 92 आए हैं, मेरे 75 आए, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। मैं अभी बहुत लौकिक बात कर रहा हूं, अभी परमार्थ में आऊंगा, ध्यान रखना आप। हां, अभी व्रत और उपवास की बात भी करूंगा मैं, उसमें भी मैंने कंपटीशन देख लिया है। हां, धर्म में भी मैंने बहुत गौर से कंपटीशन देख लिया है, लैग पुलिंग देख ली है जैनियों के अंदर, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आने वाले बच्चे इस चीज को ना सीखें जो कि आप सिखा रहे हैं उनको, आप उनके माता पिता होकर के। तुम्हारे 75% आए हैं, शाबाश, तुम थोड़ी और कोशिश करो तो 80 और 85 भी आ सकते हैं। क्योंकि उसके 92 आए हैं इसलिए नहीं, तुम 75 से और ज्यादा ला सकते हो। अगर हम उसे ये कहें कि तुम इससे भी बेहतर अपने जीवन को बना सकते हो तो यह चीज कभी दुखदाई नहीं होगी, क्योंकि उसका तुमसे ज्यादा है इसलिए तुम दौड़ो, यह चीज दुखदाई है। किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसा ही आज समाज में है, ऐसा ही राजनीति में है, ऐसा ही धर्म में है, सब जगह प्रतिस्पर्धा है। पहले नॉमिनेट किया जाता था कि ये समाज की सेवा करेंगे, ये अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं। अब तो संसद में जैसे चुनाव नहीं होते लोकसभा के, वैसे जैनियों के, मंदिरों के और तीर्थ क्षेत्रों के चुनाव होते हैं। इसके मायने क्या है? वहां क्या मिलने वाला आपको? कोई ना कोई आपका स्वार्थ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो आप फाइट कर रहे हैं, फाइट करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा अगर फाइटिंग सिखाती है तो वो प्रतिस्पर्धा झूठी है, दुख का कारण बनेगी। मैं अपने को उस योग बनाऊं और उस चीज को गेन करूं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मैं उस चीज के योग अपने को बनाऊं, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अयोग होते हुए भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए और मैं निरंतर पीड़ा पाऊं, यह प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन में एक दुख का कारण है। आप इस पर गौर से विचार करें। सब जगह है, अब तो स्टेटस का सवाल हो गया है। प्रतिस्पर्धा के पीछे सबका अपना स्टेटस है। बच्चों को सावधान हो जाना चाहिए अपने माता पिताओं से, उनकी हवस पूरी नहीं करनी चाहिए। हवस बहुत छोटा शब्द है, मैंने अपनी जिंदगी में शायद मंच से पहली बार कहा है, लेकिन पीड़ा से भर के कहा है। हमारे अपने माता पिता, हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो हमारा स्टेटस बड़ा हो जाएगा, और झोंक दिया उसको गैर जिम्मेदारी के साथ वहां जहां की वो बुरे संस्कार सीखेगा, वहां जहां करके जहां की वो हिंदी बोलने वालों को गरीब और कमजोर मानेगा, जहां वो अपने देश की बेइज्जती करेगा और दूसरे के गुण गाएगा, जहां वो अपने धर्म की इज्जत नहीं करना सीखेगा और दुनिया भर के लोगों की इज्जत सीखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये हुआ है और हो रहा है बहुत तेजी से, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, और जब तक बच्चे और आने वाली पीढ़ी संस्कारवान नहीं होगी तब तक कहीं कोई धर्म नाम की चीज, अकेले मंदिर में घंटी हिला देना और धारें कर लेना, अब कोई नवयुवक मुझे नहीं दिखता, न घंटी बजाने वाला न धारें करने वाला, बेई बूढ़े लोग ढो रहे हैं उस परंपरा को, ढो रहे हैं उस परंपरा को, क्योंकि उन्होंने उस परंपरा को कभी खुद अपने जीवन में रियलाइज नहीं किया, उस परंपरा से कोई लाभ नहीं लिया, वरना उनके आने वाली पीढ़ी उससे लाभ लेती, उन्होंने खुद भी कोई लाभ नहीं लिया। नई पीढ़ी की भी गलती नहीं है, उन्होंने अपने माता पिता को देखा कि ये वहां जाके पूजा भी ठाट बाट से करते हैं, जलधारा करते हैं, और आकर के दुकान पे हमको सिखाते हैं कि बेईमानी करो, झूठ बोलो, ये वही माता पिता हैं, तो रहने दो इनका धर्म इन्हीं तक। ये हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है या नहीं हुआ मुझे बताइएगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा और हम अच्छे बन जाएंगे? नहीं भैया, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा में हम डाल रहे हैं वो हमारे लिए स्वयं दुख का कारण है और आने वाली पीढ़ी को भी दुख का कारण है। हम अब इस प्रतिस्पर्धा के चलते संवेदन शून्य हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए, हमारी संवेदनाएं भी मर गई। अगर आज कोई बहुत आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति और कहीं गिर पड़ता है तो हमारी संवेदना जागृत नहीं होती, बल्कि हम मन ही मन मुस्कुराते हैं कि अच्छा हुआ हमें आगे बढ़ने का मौका मिल गया। ये क्या चीज है, ये संवेदन शून्यता और संवेदनहीनता ही तो है। क्या हुआ था, एक बार एक गांव में बाढ़ आई थी, बाढ़ में सबका सब बह गया था, किसी का कुछ नहीं बचा, और जब बाढ़ थोड़ी सी शांत हुई, जो बच गए थे और जिनके पास जो बच गया था उसको संभालने में लगे थे, और देखा कि एक बाबा जी, बूढ़े बाबा अपने घर के सामने बैठे हैं, वे बहुत वृद्ध थे, जो लोग भी उनके घर के सामने से निकलते थे उनको प्रणाम करते थे, उनसे सुख दुख की बातें पूछते थे, छोटे से गांव में सब एक दूसरे से सुख दुख की बातें पूछते हैं, आज भी वहां थोड़ी सी संवेदनशीलता तो है, बड़े शहरों में तो हो सकता है कि बाजू में भी रहते हों और कभी मुकातिब भी ना हुए हों, कभी रूबरू भी ना हुआ हो, कभी हम आमने सामने भी ना आए हों, इतने व्यस्त हैं। एक युवक वहां से निकलता है और पूछता है कि बाबा कैसे हो, बहुत उदास लग रहे हो, हां बेटे आओ बैठो, क्या हाल चाल है गांव के। युवक को लगा कि बाबा के अंदर कितनी कितनी दया है, कितना प्यार है अपने गांव वालों से, पूछ रहे हैं क्या हुआ सबका। बाबा उदास है और उदासी से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ सबका, क्या हुआ गांव में। बाबा कुछ मत पूछो, सबका एक सा ही हुआ, और उनका क्या हुआ, अरे उनका भी सब सब चला गया, सब बह गया, उनके मवेशी भी बह गए। अच्छा, उनके मवेशी भी बह गए, उनका सब बह गया। जैसे जैसे बाबा पूछते चले जाते हैं नाम ले ले करके, और मालूम पड़ता जाता है, जैसे जैसे युवक तो ये सोचता है कि कितनी चिंता है उनको अपने गांव के लोगों की, लेकिन युवक चेहरे पर देखता है कि उन बाबा के चेहरे पर धीरे धीरे चमक बढ़ती चली जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले वे गमगीन और उदास थे, अब उनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे मालूम पड़ता, और वो उनका क्या हुआ, बाबा कुछ मत पूछो, उनका भी सब बह, उनका भी सब बह गया। तब कोई दुख का कारण नहीं है, तब अपने बहने का आप कोई दुख नहीं है जब उनका भी बह गया। मेरी पीड़ा इसलिए नहीं थी कि मेरा बह गया है, सब मेरा नष्ट हुआ है, मेरी पीड़ा ये थी कि मुझे लगता है कि सबका बच गया है और मेरे ही अकेला नष्ट हुआ है। अगर इस तरह अपन गौर से देखें तो हमारे सारे दुख का कारण क्या है? एक ही है, मैं भला बनूं, यह नहीं, मैं आगे बढ़ूं, यह नहीं, दूसरे बुरे हैं तो मैं खुश हूं, दूसरे पीछे हैं तो मैं खुश हूं, दूसरे अगर भले हैं और आगे हैं तो मैं दुखी हूं। देखो तो मजा, क्या ऐसे हम अपने बारे में अपन सब कह रहे हैं, क्या ऐसे हम लोग कभी अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सिर्फ बात ही है हमारे पास अच्छा जीवन बनाने की, विचार करिएगा। दूसरा और कारण है, बहुत खतरनाक कारण है, जो धीरे धीरे बिल्कुल जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है वैसा फैल रहा है, प्रदर्शन। जब तक मेरे पास जो है वो कोई दूसरा नहीं देख ले, तब तक उस चीज का मेरे पास होना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अरे भैया, बड़ा मुश्किल। हाँ, प्रदर्शन के मायने मालूम क्या है? हिंदी में तो प्रदर्शन, इंग्लिश में टू एग्जिबिट, और इसका जब डिक्शनरी में मीनिंग देखो तो क्या लिखा हुआ है कि आओ देखो ये है हमारे पास और तुम्हारे पास है ही तक नहीं है, ये है प्रदर्शन। मुझे सारा मजा इस बात का है, मेरे पास है इसका मजा नहीं है, आओ देखो मेरे पास है और तुम्हारे पास है तक नहीं। और इस प्रदर्शन के चलते कितना आडंबर आज हमने संसार में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी आडंबर, दिखावा। हां, सब प्रदर्शन है। अरे और तो छोड़ो, अब मुझे उतनी बड़ी बात कहनी चाहिए कि नहीं, मुझे एक बार सोचना चाहिए क्योंकि टेप हो रही है। नहीं कहते भैया, काय को बेकार में परेशान, धर्म के क्षेत्र में काय को कहो, सब दूर कम, सब दूर प्रदर्शन है। थोड़ा सा करेंगे दिखाएंगे ज्यादा। हां, जरा सा करेंगे धर्म और दिखना चाहिए कि हमने बहुत करा है। बहुत बढ़िया सा पंडाल हो, बहुत बढ़िया सी सजावट हो तो प्रभावना बहुत हुई, यही ना। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एग्जिबिट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। अब लोग कहते हैं, महाराज यहां कहां अपने मंदिर में भीतर भीतर प्रवचन कर रहे हो, जरा थोड़ा सा वहां करो, वहां सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इसे भी प्रदर्शन ही मानता हूं। अगर किसी को आवश्यकता है तो उसे जहां दो भली बातें मिलती हैं वहां तक आने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नहीं, कोई चाहे चाहे नहीं चाहे, हम तो अपने आप को एग्जिबिट करेंगे। हो रहा है प्रदर्शन, हो रहा है धर्म का भी प्रदर्शन। पत्रिका छपेगी, हमारे शहर की पत्रिका तो बड़ी ही छपेगी। अब आ गया मैं अपनी बात पर। मैं पहले सोच रहा था कि नहीं कहूंगा, पर अब कहना ही पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं वहां लगी हुई पत्रिकाओं में कि किसकी पत्रिका इंपोर्टेड पेपर पर है और किसकी कितनी खूबसूरत है, किसकी कितनी महंगी है। वो उतना बड़ा, वो समाज उतना बड़ा है क्योंकि उसने इतनी बढ़िया इतनी महंगी पत्रिका। इसको आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप धर्म प्रभावना मानते हैं ना? है, धर्म प्रभावना है, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ इंटेंशन है वो उस धर्म प्रभावना को खोटा कर देता है। बस इतना सा ही काम है। किसी भी चीज का दिखाई पड़ जाना बुरा नहीं है, किसी भी चीज को दिखाने की कोशिश करना जो चीज जैसी है, सुंदर है तो सुंदर है, प्यारी है तो प्यारी है, इसमें क्या बात है। लेकिन ये सिद्ध करना, ये तो हमारे जीवन में दुख ही देने वाला है। सपोज करिए आपने एक खरीदी कार, बहुत बढ़िया खरीदी है, लेकिन आप ले जा रहे हैं उसको रास्ते में, आपके मन में क्या भावना आती है, कोई इसको देखे, नहीं आती? सच्ची बताओ, हो सकता है हम गलत भी कह रहे हो, नहीं आता कि देखे, एकदम नया मॉडल तो लेके आए हैं, एक आध कोई तो कह देवे क्या कब लाए, एकदम नया लग रहा है। एक छोटी सी, मतलब कार कह रहा हूं, छोटी से छोटी चीज भी, अगर कपड़े भी हमने नए पहने हैं तो हमारा मन करता है कि आज जब सभा में बैठेंगे तो बाजू वाला कहेगा कि कौन सी वाली दुकान से खरीदा, नई डिजाइन एकदम लेटेस्ट लग रहा है ना, लेटेस्ट लग रहा है। इतना सुनने के लिए कितना मन करता है, सारा सुख जैसे कि मेरे कपड़े पहनने का नहीं है, दूसरा उसे देख ले वे, सारा सुख इसमें है। ऐसे लोग हमेशा दुखी पाते हैं। और अगर रास्ते में चलते और आप की कार के पास आके कोई खड़ा हो और वो कुछ ना कहे और आपको कहना पड़े कि देखा ये नया वाला मॉडल, वो कह दे कि सो वाट, तो हम क्या करें, तखीर अपने पास। फिर देखो आप ऐसा रखेगा कि उठा के फेंक के आ जाए। इससे मालूम पड़ जाता है कि हम कितने प्रदर्शन में पड़ गए। एक बूढ़ी अम्मा थी, हम आज बूढ़ी बूढ़ी लोगों का उदाहरण। हाँ, तो बूढ़ी अम्मा, देखो बूढ़े लोगों की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि हम बूढ़े लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं, नहीं, पर ऐसा होता है, आसक्तियां घेर लेती हैं। बहुत दुर्लभ है बुढ़ापे में आसक्तियां ना हो, वैराग आ जाए और विरक्त हो जाए, जैसे कि आपके सामने बैठे हुए हैं महाराज, बूढ़े होने के बाद भी विरक्त हैं। लेकिन हमने अक्सर बूढ़ों को देखा है आसक्त होते, और अधिक आसक्त होते, घर गृहस्थी, इसलिए उन बूढ़े लोगों की बात करें। वो अम्मा जी एक अकेली थी अपने घर में, ज्यादा कुछ उनके यहां था नहीं, लेकिन एक बार वो बाजार गई, उनको पान खाने का बहुत शौक था, तो वहां से एक मछला लेकर के आई, पान का मछला बोलते ना उसको, पान रखने का, वो लखनऊ में जैसे बनता, वो लकड़ी से बनाते हैं उसको बढ़िया से, वो लेके आई। अब लेके आई और जो भी घर में आए तो पान तो वैसे उनको कम खाना रहते थे, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया उनका पान खाना। क्यों? क्योंकि जब तक कोई देख ना ले, और उनने बहुत कोशिश करी कहीं भी जाएं तो जल्दी से निकालें उसको, फिर एक पान खाएं, लेकिन कोई नहीं पूछे कि ये मछला कहां से लिया, इतना सुंदर। और बड़ी मुश्किल में वो कह रही, इतने दिन हो गए। अभी एक दिन जो है बड़ा हल्ला हुआ मोहल्ले में कि अरे बूढ़ी अम्मा के यहां पर आग लग गई, आग लग गई। सब भागे, पहुंचे वहां पर, अरे क्या हुआ बूढ़ी, हमारे देखो तो आग लग गई, आग लग गई। कुछ नहीं, थोड़े से कागज वागज में आग लगी थी, लोगों ने बुझाई, कुछ लोग बुझाने में लगे थे, कुछ लोग बूढ़ी अम्मा के पास खड़े थे। उतने में बूढ़ी अम्मा ने फिर वो अपना मछला निकाला और उसमें से एक पान खाया, और इतने में किसी की नजर पड़ गई, उसने कहा बूढ़ी अम्मा ये मछला पान का कब खरीदा, अरे पेड़े पूछ लिया होता तो आग काय को लगती है। आग आग इधर भीतर लगी थी इसलिए बाहर लगाना पड़ी। अपने दुख का कारण हमने खुद निर्मित किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, चीजें उपयोग करने के लिए ही हैं, दिखाने के लिए नहीं। चीजों का आनंद उनके उपयोग करने में, सदुपयोग करने में है, उनको सिर्फ दूसरे को दिखा करके उसके मन में ईर्ष्या पैदा करना, उसे दुख में डालने की भावना रखना, यह तो अपने ही दुख का इंतजाम करना है। प्रतिष्ठा के बारे में भी ऐसा ही है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी, खैर गरीब तो जो गरीब है वो उतना नहीं कर रहा, जो बहुत बड़ा है वो भी अपने में मस्त है, मामला तो बीच वालों का है, तकलीफ उनको ज्यादा है। गरीब हैं स्वीकार कर लिया कि गरीब ही हैं, दुखी हैं, बड़े हैं स्वीकार कर लिया कि बड़े ही हैं, बीच वाले न गरीब हैं न बड़े हैं, अब वे बीच में हैं। और हम सब में से अधिकांश लोग इसी कैडर में हैं, अधिकांश 90%। और वे अब इस चिंता में हैं कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल, गरीब हूं तो प्रतिष्ठा का कोई सवाल ही नहीं, बड़ा हूं तो प्रतिष्ठा अपने आप है, कोई बात ही नहीं, कुछ प्राप्त करने कुछ कोशिश तो करनी नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग के साथ यही हो रहा है। अब ऑफिसर बन गए हैं तो ऑफिसर की हैसियत से रहना पड़ेगा, भले ही खाने को कुछ ना हो, कपड़े अच्छे पहनना पड़ेंगे, बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, और हो सकता है कि गाड़ी से पहुंचाने जाना पड़ेगा तो गाड़ी भी लेने पड़ेगी, और चार लोग आएंगे और कहेंगे साहब के यहां जा रहे, तो कलर टीवी रखना पड़ेगा, गीजर भी रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, आप बता देते हैं तो याद रह जाता है। इतनी सब चीजें क्यों रखना पड़ी, अपने उपयोग के लिए जी नहीं, प्रतिष्ठा के लिए। घर में आज जाकर के देखना कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए रखी है। आप पाएंगे कि 90% ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख के पूछना अपने से, बेईमानी नहीं, मैंने 90% चीजें सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की वजह से। ये प्रतिष्ठा किसकी रह पाई है, सिर्फ दुख देने वाली है, और मिल भी रहा है दुख। जब हम उस लायक नहीं है तो हम उन सब चीजों को पाने की चेष्टा क्यों करें। प्रतिष्ठा हमारे गुणों से होनी चाहिए, अब हमारी प्रतिष्ठा हमारी चीजों से, अच्छा और कोई करे भी क्या, लोग भी इसी तरह के हो गए, लोगों का सोच भी ऐसा ही हो गया, देखने वाले की दृष्टि भी ऐसे ही हो गई। अरे अब ब्याह कर भी की सोच रहे थे, उनके घर सुनी थी कि अच्छा लड़का है, देख भी गए थे मनो कछु अच्छी स्थिति नहीं है, ने कछु होते नहीं, गीजर है तो न टेलीविजन है तो कछु नहीं, गुणवान है इससे कोई मतलब नहीं, भला आदमी है इससे कोई मतलब नहीं है, व्यसन नहीं करता इससे कोई मतलब नहीं है, व्यसनी भी है मालूम है कि शराब पीता है, इसके बाद भी चूंकि हमारे स्टेटस का सवाल है इसलिए ब्याह उसी से करेंगे, हम छोटे आदमी से ब्याह नहीं कर सकते अपनी बेटी का। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता है, न कोई बेटी ये पूछती है जिससे विवाह कर रहे हैं कि आपको शराब पीने की आदत तो नहीं है, नहीं तो आप उसको लाओ जो आपको शराब पिला सके। बहुत स्पष्ट है, जब हम इतनी बात करने लगे हैं आज, फ्रेंकली बात करने लगे हैं, वो पुराने दिन लग गए कि जब चुपचाप माता पिता ने तय कर दिया, फिर क्यों हम आज ऐसा नहीं कर पा रहे। आपको मंदिर जाने की आदत है कि नहीं, आपको अगर मंदिर जाने की आदत नहीं है तो किसी और को ढूंढिएगा जिसके भी मंदिर आने की आदत ना हो, मेरी आदत में मंदिर जाना है जरूरी है। ये सब चीजें बहुत लौकिक मालूम पड़ती हैं, लेकिन आज सिर्फ प्रतिष्ठा के चलते इन सब चीजों को हमने एक तरफ रख दिया है, और हम सिर्फ प्रतिष्ठा के पीछे अपनी इन सब भली चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं भैया, थोड़ा सा तो अपने जीवन में सिर्फ बाह्य चीजों से अपने को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा ना करें, अपने भीतर अंत गुणों से अपनी प्रतिष्ठा करने की कोशिश करें। दूसरे के अंदर भी गुण हैं तो उसको उसकी उसको प्रतिष्ठा दें, अकेले उसके सामान से उसके धन संपत्ति से, असल में हम लोग जो धन संपत्ति बान है उसको हम प्रतिष्ठा देते हैं तो दूसरे को भी लगता है कि मुझे भी अगर प्रतिष्ठा पानी है तो मुझे भी जैसे बने तैसे बेईमानी करनी पड़े, चीटिंग करनी पड़े, जो करना पड़े जैसे भी लाओ, मुझे भी यश और वैभव कमाना चाहिए, क्योंकि सम्मान उसी को मिलता है आज तक हमने किसी भी पीछे बैठे हुए ईमानदार आदमी को मंच से माला नहीं पहनाई, न साहस भी नहीं किया। आज हमने किसी भी व्यक्ति को जो ईमानदार है कभी व्यसन नहीं करता, उसको मंच से सम्मानित नहीं किया। हो सकता है कि एक हम नेता को बुलाएं जिसके बारे मालूम है कि व्यसन करता है, फिर भी हम उसको मंच पे बिठाएंगे और उसका सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे। इससे ज्यादा पब्लिक होगी अगर एक ठो किसी राजनेता को यहां बुला लिया जाए, अभी पूरा भर जाएगा ये वहां पीछे, तो यहां जगह नहीं मिलेगी कहीं भी आने के। देख लो आप, सब इसी में लगे हुए हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। नहीं भैया, मैं देखूंगा आगे आने वाले दिनों में अक्टूबर में कि बिना किसी राजनेता के और धर्म नेताओं के द्वारा जो कुछ दिया जाता है उसे आप ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। चैलेंज है आपके लिए। हां, देखें हम कि हमारे अंदर क्या सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाने की ललक है जरा भी। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे भीतर आज है क्या। मैं बहुत कठिन बात तो नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं बहुत मैंने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा हूं ऐसा कह करके, नहीं मुझे लगने लगता है। लेकिन क्या करें, बहुत देखते देखते और लगने लगता है कि कहीं कोई चोट तो होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी चोट पहुंच जाए, आपको थोड़ा बुरा लग जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। लग तो जाए, थोड़ा लग तो जाए एक आध बार, और उसी बुरे लगने में ही आप अपने जीवन को अच्छा बना ले, मुझे इसलिए खुशी होगी। हम लोग किस तरह हो गए ऐसा सोच करके बहुत दुख लगता है। हम लोग दूसरे से भी वही अपेक्षाएं रखते हैं, वही प्रदर्शन, वही प्रतिष्ठा, वही प्रतिस्पर्धा, दूसरे को भी हम उसी में डालते हैं और खुद भी उसी में पड़े हुए हैं। किसी को शांति से अपना जीवन जीने के लिए माहौल ही नहीं देते। हम अपना वातावरण ही हमने चारों तरफ का ऐसा बना लिया है कि उसमें जो भी आता है वो उसी रो में शामिल हो जाता, उसी रेले में शामिल हो जाता, उसे होना पड़ता, मुश्किल पड़ती उसको, क्योंकि वो सहज रूप से नहीं जी सकता, उसे ये सब करना पड़ेगा, उसे कृत्रिम होना पड़ेगा, उसे आडंबर करना पड़ेगा। मैं आपसे अपने अंतरंग की पीड़ा कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी कदापि मन नहीं होता। मेरा मन सिर्फ ये होता है कि बैठें, प्रेम से दो बातें करें, अपने जीवन में कुछ सीखें और बस खत्म। क्या आवश्यकता है और किसी चीज की। लेकिन आज जमाने ने वो सब करने के लिए मजबूर कर दिया है जो कि आवश्यक नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा चेंज करिएगा अपने आप को। और ये सब चीजें तो हमारे दुख की कारण है, कोई सुख का कारण है जीवन में? है। सुख का कारण है प्रेम, सुख का कारण है प्रीति, सुख का कारण है अनुराग, सुख का कारण है श्रद्धा। ये सब चीजें हमारे सुख का कारण है। अगर किसी से हमारा प्रेम है तो हम काहे को उससे कंपटीशन करें, काहे को उससे प्रतिस्पर्धा करें? प्रतिस्पर्धा तो देश पूर्वक होती है, प्रदर्शन में देश है, प्रेम कहां है? प्रतिष्ठा में द्वेष ही तो है दूसरे से, सब में, तीनों में द्वेष है। और अगर हमारे भीतर इस देश की जगह पर प्रेम आ जाए, इस देश की जगह पर अनुराग आ जाए, इस देश की जगह पर भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ने लगे और गुणों के प्रति हमारे मन में प्रमोद का भाव आने लगे, दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव आने लगे, अगर ये सारी चीजें हमारे भीतर आ जाएं, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी न प्रतिस्पर्धा की न प्रदर्शन की। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण कहूं और मेरे ख्याल से बात पूरी हो गई। इन सब चीजों पे अब ज्यादा विचार करने की आवश्यकता तो है नहीं, अपनी कमजोरियों पे हमने विचार कर लिया, उन कमजोरियों को अलग कर देंगे हम। लेकिन उन कमजोरियों को अलग करने का एक ही उपाय है, वो है हम सबके प्रति अपने मन में सद्भाव रखना शुरू कर दें। असल में प्रतिस्पर्धा के पीछे भी दुर्भावना है, प्रदर्शन के पीछे भी दुर्भावना है। दुर्भावना मेरे कष्ट का कारण है, मेरे दुख का। अगर इन तीनों को ना कह के अगर ये कहें कि आज हमारे मन में बढ़ती हुई जो दुर्भावना है, वही हमारे दुख का कारण है, वो दिखती नहीं है। इसलिए मैंने अगर ये कहा होता कि दुर्भावना, तो शायद हम सब कहते कि नहीं महाराज मेरी कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं, जरा भी नहीं। बताइए एकदम हमको कोई अगर एकदम कहते कि आपकी तो दुर्भावना है, नहीं नहीं हमारी कोई दुर्भावना नहीं। लेकिन ये सब क्या है, ये प्रतिष्ठा, ये प्रतिस्पर्धा, ये प्रदर्शन, क्या इसमें कहीं कोई दुर्भावना नहीं छिपी है? वैसे तो ऐसा लगता है कि नहीं कहां दुर्भावना, पर ये बहुत छिपी हुई हमारी अपनी कमजोरी है। हम अपने जीवन में इस दुर्भावना का निकाल करके सबके प्रति सद्भावना शुरू करें। यशपाल जी ने अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा है, वो बर्लिन गए थे, विदेश यात्रा पर गए, बर्लिन जापान में है। डिवाइडेशन हो गया था उस समय जब वो गए थे, यशपाल जैन, अब तो शायद लोग ऐसे लोगों को भी नहीं जानते होंगे, अच्छे लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं, पेपरों में अच्छे लोगों के बारे में कम निकलता है, हेडलाइन आती ऊपर जो कुछ भी गड़बड़ होता है उसकी। खैर क्या करें, ऐसा है ही, जमाने ही ऐसा है, किसी को क्या दोष दें, हम ही इसमें पैदा हुए हैं। अगर बहुत पुण्यात्मा होते तो काय को यहां पर पैदा होते कहीं विदेश क्षेत्र में और अपना धर्म ध्यान कर रहे होते। इस पंचम काल में और इस भारत क्षेत्र में पैदा होना, जब मालूम है जब लक्ष्मण जी जा रहे थे रामचंद्र जी और सीता जी के साथ वन में, तब उनकी जीवन साथी वो मिला ने उनसे क्या कहा था कि वहां रात्रि भोजन का अवसर आए, नहीं अगर तुम रामचंद्र जी की सेवा में कमी करोगे तो तुम्हें उतना ही पाप लगे जितना रात्रि भोजन का पाप लगता और जितना पंचम काल में पैदा होने का पाप लगता है। ये पुराणों का वाक्य है, ये तो हमारा थोड़ा सा पुण्य है पल्ले में, जो इस कलयुग में भी हम दो बातें धर्म की सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, दो बातें अपने कल्याण की सुनने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, ये कोई पल्ले में पड़ा हुआ पुण्य है। बाकी तो सब जो कुछ भी हमारे भीतर गड़बड़ है या संसार में है सब हमारा पाप ही है, किसी को क्या दोष दे। बर्लिन गए वो विदेश यात्रा पर, लिखते हैं कि वहां पर मुझे जापानी भाषा नहीं आती थी और कोई दुभाषिया नहीं मिल रहा था। जब मैंने वहां तलाश किया तो किसी ने कहा कि इंडिया के दो स्टूडेंट वहां जापान में अध्ययन करने आए हैं, उस फलाने कॉलेज में और हॉस्टल में मिल जाएंगे वो। बोले मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उनसे मिलने गया। वो मिले मेरे से, लेकिन तब तक अच्छे से मिले जब तक मैंने उन्हें अपना पर्पस नहीं बताया, जब तक मैंने उन्हें अपना कारण नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूं आपसे मिलना। जब मैंने उन दोनों से अलग अलग कहा कि क्या मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बर्लिन घूमना भी है और मुझे भाषा आती नहीं है, तो मालूम इंडियन होने के बावजूद भी एक ने अपनी तबीयत का बहाना बना करके और दूसरे ने अपने पढ़ने का बहाना बना करके और एक तरफ हट गए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं हमको पढ़ना है, दूसरे ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यशपाल जी लिखते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या संसार सिर्फ इतना ही रह गया, इसमें से क्या प्रेम, इसमें से क्या जो जो अच्छा था वो सब खत्म हो गया है? लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक संसार है तब तक इसमें अच्छा भी रहेगा, बुरा कितना भी क्यों ना। वे बाहर निकले बहुत उदास, लिखते हैं कि मैं बहुत भारी कदमों से, क्योंकि बहुत उत्साह से आया था कि वे दोनों तो मेरी मदद करेंगे, यहां कौन है मदद करने वाला, लेकिन नहीं मदद की। वापिस लौटते थे कॉलेज से, बाहर निकल रहे थे, उनकी स्थिति देखकर कि एक जापानी युवक वहीं पर खड़ा हुआ उनको देख रहा था उनके कमरे से बाहर निकलते, उसे शायद कुछ ऐसा लगा हो और उसने उनसे कहा कि आप मेरे इस देश में मेहमान की तरह हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। एक क्षण उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, एक वे हैं जो मेरे ही अपने देश के हैं, जिनके पास मैं अपनी मदद मांगने गया था, जिन्होंने अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दिया। एक ये यहां का व्यक्ति है जो कह रहा है कि आप मेरे भारत में, मेरे देश में मेहमान हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा, नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, मुझे भाषा नहीं आती और मैं आपके वर्लिन को घूमना चाहता हूं, सुनता हूं कि वर्लिन बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है, क्या मुझे घुमा सकते हैं आप? हां हां, क्यों नहीं घुमा सकता। उस बेटे ने 3 दिन तक इन्हें अपने साथ रखा, अपने ही कमरे में रखा और रोज अपना उससे नहीं भूलूंगा। बताइए, आज जबकि सब अपने अपने में मशगूल है, आज जबकि सबको अपनी पड़ी हुई है, आज जबकि सब लोग दूसरे को पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे समय में भी लोग हैं जो कि दूसरे के लिए अपना समय, अपना जीवन तक देने के लिए तैयार है, वे लोग सुखी हैं। मुझे यही कहना आपसे, हम सब अगर दुखी हैं तो सिर्फ कभी हमने दूसरे को सुखी करने की चेष्टा नहीं की इसलिए दुखी हैं, हमने सिर्फ दूसरे को अपने सुख के लिए दुख पहुंचाया है, हमारे दुख का वही कारण है और कोई कारण नहीं। कि हम ऐसी कोशिश नहीं कर सकते कि हमारे इस छोटे से जीवन से किसी को दुख ना पहुंचे, ना पहुंचे सही सुख, पर हमारे इस छोटे से जीवन किसी को दुख ना पहुंचे, इतनी भी हम कोशिश कर ले तो हमारे जीवन से दुख जरूर दूर हो जाएगा। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन सुखी हो, हम सब अपना हित कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, इसी भावना के साथ आज अपन नमो गान करते हैं।
चत्ताय
सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्ताई सर्णम पवज्जामि अरिहन्ते सर्णम पवज्जामि सिद्धे सर्णम साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि
बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है चौ द्रव्य जान वेखो बंद वेद भान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी बताए बेको जीवों के जताए बेको कबू न सताए बेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको ये ही देने वाणी है वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो ये दिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन जो तेरो शरणागे सो पावे सु
बोलिए जिनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य विद्या सागर जी महाराज की परम पूज्य मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुंडा श्री भक्ति सागर जी महाराज की मुनि संघ की बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का चातुर्मास समिति स्वागत करती है। आपके भोजन की व्यवस्था समाज की ओर से जैसवा जैन धर्मशाला में की गई है, कृपया व्यवस्था को स्वीकारें। कल मुनिराश्री का कल से प्रवचन ठीक प्रातः 8 बजे से होगा, आप सभी समय का ध्यान रखेंगे प्रातः 8 बजे से। और एक ये पायल प्राप्त हुई है यहाँ पर, जिस किसी माता बहन की हो यहाँ से आकर के ले जाएं।